काकुण्डस्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महाप्रसन्नाय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरवस्थिते गुरवे गौरचन्द्राय सदाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय सदभक्ताय नमो बॉयफ्रेंड के साथ में आई, शराब पिए हुए थे,
उसके आगे हम लोग खुले हुए थे और हाथों में भी बोतल थी, शराब की बोतल थी और गन था, पाइप गन। मैंने उसे कहा, जैसे बेटी ये हमारे कुल के रीति नहीं है, तुम क्या कर रही हो? तुमको इसलिए नहीं पढ़ाया, हम भारत छोड़कर के अपने टीचर को बेचने के लिए हम लोग नहीं आए, और तुम ये क्या कर रहे हो? अभी पढ़ेंगे तो अभी अभी बंदूक सुरफोट नहीं, अभी एक सेकेंड चल रहा है, तुम क्या बैठी? और हमारे घर में ये होता रहा, मैं देखता रहा, मैं सोचा रहा जब फांसी लगा लूँ या बीज खा लूँ या क्या करूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा। यदि भारत में मैं लौटूँ तो हम लौट करके मैं वहाँ क्या करूँगा, और यदि यहाँ रहता हूँ तो यहाँ क्या करूँगा? मैं कुछ समझ नहीं आया मुझे क्या करना चाहिए। तो अपनी करनी का फल होगी, आपने मुझे शिक्षा नहीं दी, इसका यह समाज ऐसे बहक रहा। यहाँ पर भी ऐसा ना हो, एक दिन के लिए एक बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड कर ली, आज उतने के बाद में लड़के के दो हो गया, इसके बाद वो डाइवोर्स करके दूसरे किसी प्रेमी के साथ में चली गई, जीवन बर्बाद हो गया, वो लड़की नहीं जानी नहीं हम किसके पुत्र हैं, वो समाज कैसे उन्नत हो सकता है, व्यक्ति कैसे सुखी रह सकता है? इसलिए हमारी बहनें बेटियां और माताएं भी इन चीजों को सीख हैं, और हमारे भाई लोग भी इन चीज को सीख हैं, इसके लिए भी कुछ ट्रेनिंग होनी चाहिए। आजकल इसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं है, इसकी भी शिक्षा है। हमारे गुरु जी कहते थे जैसे गुरु ट्रेनिंग होता है, मंत्रों का ट्रेनिंग होता है, ऐसे फादर मदर का भी ट्रेनिंग होना चाहिए। वो अपने बच्चों को किस प्रकार से पालन पोषण करें जिससे वो जीवन में सुखी रह सके। आज हम देखते हैं कि घर घर की समस्या है। भारतवर्ष में मैं जब था बम्बई में था एक बार, तो भारतवर्ष के समस्त उत्पन्नियों में हिंदुजा परिवार है, एक आप सब जानते हो, जानो बहुत धनी अबार धनी वाले, और कितने उनके सदाचार और कितने त्याग हैं उसका कम नहीं सकता। मैं उन्होंने अपने घर में निमंत्रण किया मुझे, मैं गया, कुछ समय बैठा, बातचीत होने लगी। कितने मैं समझता था कि बड़े सुखी लोग होंगे, कितने मैं जानता था कि सुखी नहीं हो सकता। उनका एक लौटा बेटा जो बड़े बड़े भाई हैं अशोक हिंदुजा, उस सारे विश्व में अपना कंट्रोल करते हैं, बिजनेस तरह तरह के हैं, उनकी कितनी आमदनी है कोई ठहर नहीं है, और कितना खर्च करते हैं ये भी ठहर नहीं है। वो पिछले वर्ष उनका एक ही लड़का था, वो 22-23 वर्ष का, और उसने जहर खा दिया। उसके माता पिता भाई लोग सभी लोग पागल हो गए, मैंने कैसे खाया थी? वो एक सुंदरी ऑस्ट्रेलियन गर्ल के साथ में शादी करना चाहता था, किंतु उस लड़की ने इनकार कर दिया, बस उसने बीज खा लिया। तो बतलाओ वो धन और ये सब कुछ राकर के क्या किया, सभी पागल हो गए। हमने बहुत उनको सांत्वना दिया, कहो भगवान का स्मरण कीजिए तभी आप सुखी रह सकते हैं। बच्चों को आपने ऐसी शिक्षा नहीं दी, कभी कथाओं में नहीं ले गए, उन लोगों ने सुना नहीं, आत्म तत्व के संबंध में नहीं सुना, तो क्या यही करी भी सब कुछ है और धन भी सब कुछ है, कहाँ आपका धन धन क्या दिया? इसलिए आप लोग विचार करें, अपने बेटा बेटियों को भी अच्छी शिक्षा देंगे, नहीं गए वो आप लोगों को नहीं मानेंगे, आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। अच्छा घर में समस्या यही है, तो जिसमें यही समस्या है तो वो भगवान का भजन क्या करेंगे? जो माता पिता की सेवा नहीं कर सकते हैं वो भगवान की सेवा क्या करेंगे? वो तो कहते हैं कि बाई एक्सीडेंट हम पैदा हो गए, वो तो अपने भोग के लिए वो मिल रहे थे, हम पैदा हो गए, इसलिए उनके लिए इसलिए है माता पिता का, वो नहीं कर नहीं मानते हैं। इसलिए ये सब शिक्षाएं होनी चाहिए, विशेष संतों को बुलाना चाहिए जो इस विषय में परफेक्ट है, जो आचरण करते हैं उनकी बातें सुननी चाहिए, उससे बहुत परिवर्तन हो जाता है, समाज सुखी और ठीक रहता है। ऐसे प्राचीन सब कितने उदाहरण भरे पड़े हैं, क्यों भजन करना चाहिए हमें, जरूरत क्या है? एक आदमी को धन है, संपत्ति है, 10-20 कार्य है और बहुत से उसके बिजनेस वाणिज्य और सब कुछ है, वजह किस लिए कर लेते हैं? कोई नहीं तो दुख है।
कैन यू टेल समथिंग? कैन यू लेट एंड होल फैमिली
फाइव इज टू टू फाइव
व्हाट इज द नीड?
अभी कल हमने बताया था कि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जी के पास में गंगा के किनारे वो बैठे हुए थे, पानी पीना छोड़ दिया, भोजन करना छोड़ दिया, राज सिंहासन और मुकुट भी उन्होंने छोड़ दिया, धनुष बाण छोड़ दिया और वहीं पर बैठ गए। और सब ऋषि महर्षि सब लोग 88,000 और मैंने कितने कितने सब लोग वहां पर मिनटों में, बड़े आश्चर्य की बात, उन दिनों में आज जैसी कोई सुविधा नहीं थी, कंप्यूटर नहीं था और सब नहीं था, किंतु विज्ञान इतनी उन्नत, बहुत उन्नत था जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मिनटों में चारों तरफ में खबर हो गया और कैसे मिनटों में वो कैसे वहां से कहां कहां से वर्ल्ड के भी एक विभिन्न पार्ट से वहां पर सभी लोग पहुंचे। और परीक्षित महाराज जी ने पूछा कि महाराज हमारा एक प्रश्न है, दो प्रश्न है, जो अभी तुरंत मरने वाला है, जिसकी कोई रेमेडी नहीं है, जिसको विश्व में कोई बचा नहीं सकता, तुरंत अभी मरने वाला है, बिस्तर पर सोया है, मरने वाला है, उसको क्या करना चाहिए? और जो आज नहीं तो कल, नहीं परसों, नहीं वर्षों, नहीं 100 वर्ष के बाद, नहीं 500 वर्ष के बाद मरेगा जरूर, उन लोगों के लिए क्या करना चाहिए? तो उन्होंने बताया, सभी संतान परो धर्म जतो भक्ति रतो चले अहम सुख प्रतिहता देखो भाई, मैं अचूक अवगत दवा बदला रहा हूं, जो तुरंत अभी मरने वाला हो, अभी मर रहा हो और प्रातः होश में है, तो उसके कान में हरि नाम कर दो, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। इतना नहीं समय है, उससे पहले ही मरने वाला, तो कृष्ण कृष्ण या राम राम केवल कह दो बस। और जैसे तुम्हारे पास में गंगा जल और बहुत तुलसी है तो उसको मुंह में पड़ा सकते, यदि मर भी गया है कोई बात नहीं, तो भी वो नाम सुना दो, उस पर गंगा जल छिड़क दो। 7,000 ऋषि लोग थे सदर महाराज के पुत्र कपिल देव के साथ से वो मर गए थे, और सैकड़ों वर्ष बाद गंगा नदी आई, उनके पानी के पद से उनकी केवल हड्डियां का चूर्ण वहां पर होगा और कुछ नहीं था, और पद से सभी बैठ उनसे चले गए। गंगा जी की ऐसी महिमा है, ऐसी महिलाएं कैसी, गंगा जी में पानी भरा हुआ था, बाढ़ आई थी और किनारे पर एक उसमें सांप का रहने का जगह था, जिसको मान कहते हैं या गड्ढा कहते हैं, उसमें था, वो गंगा का पानी उसमें भरने जा रहा था, वो सांप वहां से बिस्तर तक निकल करके कहीं जाना चाहता था, और उस समय में गरुड़ जी कहीं अपने भोजन के लिए खोज रहे थे, उन्होंने देखा सांप ने ऐसे किया बाहर में आने के लिए, और उसी समय गरुड़ जी ने पंजे से पकड़ लिया और उसे निकाला, और निकालते ही ऊपर ले जाने लगे, इतने में उसकी पूछ गंगा नदी में लग गई, अब उन्होंने उनके पंजे के चाप से और चोट से वो बेचारा उसका प्राण निकला। तो हुआ क्या, गंगा के स्पर्श से केवल एकदम बदल गया उसका शरीर, वो चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म लेकर के वहां उपस्थित हो गया, और गरुड़ जी ने देखा ये तो हमारे प्रभु जी का रूप हो गया, तो उस अपने पीठ पर बैठा करके बैकुंठ में ले गए। ऐसी गंगा की महिमा है, तुलसी की महिमा ऐसी है, प्राण नहीं निकल रहा किसी प्रकार से, बड़ा दुखी है कोई और तुलसी का पत्र उसमें दे दो मुख में थोड़ा सा, देखो जिस कैसे या तो प्राण निकल जाएगा या बच जाएगा। ये सब चीजें मान सकते हैं, इसलिए भगवान का नाम बहुत प्रभावशाली है, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसे जब यदि कोई मरने वाला है उसके कान में सुना दो, यदि नहीं सुनने वाला है तो भी गंगा जल दे करके और ऐसे ही तुम उच्चारण करो राम राम, देखो उसका कल्याण हो जाएगा। और जो भी कुछ दिन तक जीने वाले हैं कोई गारंटी नहीं कि कब मरेंगे, उसके लिए भगवान की लीला कथाओं का जैसे यहाँ लीला कथाएं हो रही हैं सुनो और सुने कि भगवान तुम्हारे उन कामों में कथा के माध्यम से हृदय में प्रवेश करके हृदय की सारी पापों को और जितने अनर्थ हैं सबको दूर करके हृदय को निर्मल कर देंगे और अंत में उनकी सदगति हो जाएगी। बड़े बड़े ऋषियों हैं, ज्ञानी हैं, यहाँ तक कि हम ब्रह्मास्त्र करते 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 करते, करते जगत से ऊपर बहुत उठ गए हैं, किंतु उनको भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। बड़े बड़े योगी लोग हैं, बड़े बड़े तपस्वी लोग हैं, ध्यान करने वाले हैं, समाधि लगा रहे हैं, किंतु उनके अपने कर्मों का प्रारब्ध जरूर भोग करना पड़ेगा। किंतु अवैतु नाम पूर्ण सत्य प्रारब्ध कर्मों विरोध वेद। यदि एक आदमी भूल से भी मध्य समय में विशेष करके यदि भगवान का नाम उच्चारण करे, उसके जन्म जन्मांतर का किया हुआ जितना भी पाप है सब दूर हो जाए, उसको फिर नहीं भोगना पड़ेगा, कभी नहीं भोगना पड़ेगा। भगवान नाम ऐसी शक्ति यदि शुद्ध रूप में उदित हो गया तो उसके पाप सब जल करके खाक हो जाएगा, हृदय निर्मल हो जाएगा, इस जीवन में भी परजीवन में सुखी होगा। यदि विश्वास नहीं है तो आप कल से कर सकते थे, दस दिन में आप ऐसा करते हैं, यदि आपका बदल नहीं गया तो उसके लिए नई गारंटी हूँ। मैं कहीं जा नहीं रहा, अभी धरी में हूँ, अभी ऑस्ट्रेलिया में हूँ, हम सब हमसे बदलाएंगे। आप कर करके देखिए आप सुखी होते हैं कि नहीं, आपका हृदय बदलता है कि नहीं, जरूर सुखी। इसे कहा गया परीक्षित महाराज जी को, उन्होंने कहा व्यक्ति भी जो अवस्था में है वो भगवान का नाम स्मरण कर सकता है, जो कुछ चाहने वाला है कुछ नहीं चाहता, जो मुक्ति चाहता है, जो धन संपत्ति चाहता है, कुछ भी चाहता है वो भगवान का नाम संकीर्तन का है, विशेष करके कलयुग में। वो क्या है हाँ, अकामान कर बताओ मोक्ष काम उदार भी तिब्रेन भक्ति योगम जनित, विशेष करके नाम संकीर्तन, कुछ भी चाहते हो जो में कोई सुखी नहीं है नाम तो करो। और जब विशेष करके ऐसे कोई गुरु मिल जाए जो नाम करने वालों में नाम निश्चिति है, संसार से विरक्त हैं और उनको संसारिक इन चीजों से कोई मतलब नहीं, ऐसे तत्वज्ञानी हो, भक्त हो और उनके मुख से निकला हुआ यदि नाम आप ले देखेंगे कैसा चमत्कार हो जाएगा, एक दिन के अंदर में सब कुछ बदल जाएगा, धन भी संपत्ति मिल जाएगी, जीवन में सुखी भी हो जाएंगे, मुक्ति भी चाहिए वो भी हो जाएगी और अंत में प्रभु का धाम भी आपको मिल जाएगा। ऐसी ये है, इसकी कथाएं हम लोग धीरे धीरे सुनाएंगे, अभी तक सब कुछ नहीं हम लोग सुना पाएंगे, किंतु फिर भी यदि हम भविष्य में आप लोग यदि बुलाएं और हम लोग आए तो इन कथाओं को कहेंगे, बड़ी भारी से शक्ति संचलित होगी। कैसे भगवान के नाम के द्वारा जो आदमी कर्म के द्वारा पुरुषार्थ के द्वारा जो चीज नहीं कर पाता है वो कैसे हो जाता है, अभी गुरु का चरित्र आपको संक्षेप में 10 मिनट में ये बताएं कैसे। एक क्षत्रिय बालक कैसे अपने पिता का राज्य चाहता था और वो अपने दूसरे सौतेली माँ के से जो उत्पन्न हुआ उसको देना चाहता था, किंतु कैसे हो गया कि सारे तो उसी का राज्य नहीं सारे पृथ्वी का राजा वो बन गया और अंत में जो अक्षर उसको छोड़ करके भगवान की उसकी गति हो गई, भगवान की सेवा पाई। गुरु जी के संबंध में संक्षेप में आप बोलिए, आगे बढ़ जाए वहां चले जाए जो सभी लोग छोड़ पकड़ जाओ। सुखदेव स्वामी दीनान खाए दिए दीनान हुए, भगवान की कथाएं एक पर एक कहते गए और वो प्रश्न करते गए और उन प्रश्नों का मीमांसा करता हुआ करते हुए भगवान के लीला चरित्रों को भी भुगतान करने लगे। बीच में उन्होंने पूछा कि ये पानी पिएंगे, अब पानी पीने की मुझे जरूरत नहीं, आप जो ये हरी कथा सुना रहे हैं सातवें दिन तक मरना है, ये पानी के लिए तो हमारी ये दुर्दशा थी, अब मुझे पानी नहीं पीना है, मुझे भोजन नहीं करना है, सोना भी नहीं है, नींद भी नहीं, और हरी कथा सब वो सुना रहे हैं, ये कह रहे हैं कर रहे हैं ये निवृत्त करते ही उपगीयमाना बहुत सदास्तो मनोवीरामा कौतम श्लोक नाम बात धीरज के पीना पर संसार में वो कौन सा आत्मा खाती पुरुष होगा जो अपनी हत्या करने वाला है, जो भगवान की कथाओं को नहीं सुनेगा,
और वो हरी कथा अपनी आप यदि वो कोई ऐसे महात्माओं यदि आ जाए बिना किसी विश्वास के भगवान की लीला कथाओं को और सुंदर उपदेशों को सुना रहे हों और उसको न सुने तो वो आए व्यक्ति आत्मघाती है। ये हरी कथा कहती है निवृत्त जो संसार से मुक्त हैं संसार की कोई वस्तु नहीं चाहते ऐसे महापुरुष जिनको भगवान की भक्ति है और वो यदि हरी कथा कह रहे हों कैसी निरंतर अपने आप झर रही है ऐसा झरना जो कभी समाप्त होने वाला नहीं उनके मुख से निकल रही है और उसमें यदि कोई विशेष व्यक्ति भी है कोई मुक्ति भी जाने वाला है जो संसार के सुखों को भी जाने वाला है और जो परम भगवत भक्ति चाहता है सब लोगों के लिए यह अचू कराम बाण गवाह है भौरों की इसको नहीं जो सुनने वाला है नहीं सुनता है वो आत्मघाती किसको कहते हैं जैसे तीस खाकर के आदमी मर जाते हैं अपने आप फांसी लगा लेते हैं ये आत्मघाती करते हैं क्योंकि इससे भी बड़ा आत्मघाती वो है उसके पास में हरी कथा आई और वो सुन नहीं रहा है उसका निरादर कर रहा है तो इससे बढ़कर के आत्मघाती नहीं होगा करोड़ों करोड़ों की जन्म आएंगे इसके बाद में मनुष्य जन्म होगा कि नहीं कोई भी चीज नहीं है रहन की नहीं है इसलिए जल्दी से जल्दी भगवान का नाम करना चाहिए सारी आकांक्षाएं भी दूर हो जाएगी पाप राशि भी दूर हो जाएगा और भगवान के चरण में चित्त लग जाएगा और जीवन भर के लिए भी सुखी रहेंगे इसके बाद में भी सुखी रहेंगे और अंत में सब जीवन भर के इसके चक्कर से निकल जाएंगे इसमें आप लोग विश्वास करते हैं। अभी तुम्हारे ब्रह्मचारी जी इस विषय में जो उपदेश है और जो लीला कथा है संक्षेप में कुछ कहेंगे इसके बाद में फिर कृष्ण की एक सुंदर मधुर लीला का मैं वर्णन करके आज का सब समाप्त करता हूं।
थोड़ा सा कीर्तन कर दो। भगवान की कथा ऐसी होती है जो काल डर जाता है। अभी कलयुग का साम्राज्य है वो नहीं चाहता कि हमारे राज्य से कोई निकल करके भगवान के धाम में पहुंचे इसलिए आंखों पर एक सौ मन का पत्थर जैसा आंखों पर आ जाता है जम्भाई आने लगती है और वो बेचारा सोने लगता है और इस अमृत से वंचित हो जाता है। किंतु नाम संकीर्तन ऐसा है कि उसमें नींद भी नहीं आएगी इसलिए सबसे श्रेष्ठ है भगवान का नाम कीर्तन। अभी सुने ले लो रोए कोई राम का प्यार था जिसने 7000 वर्ष तक तपस्या की पानी पीना छोड़ दिया हवा लेना भी बंद कर दिया सोना भी बंद कर दिया शरीर में दीमक लग गए खा गए सब उसकी तपस्या से ब्रह्मा जी संतुष्ट होकर के आए पानी छिड़क दिया उसके ऊपर में प्रोक्षित कर दिया मंत्र पढ़कर और उसे दिव्य नौजुवक एकदम 16 वर्ष जैसा वज्र जैसा शरीर निरोग स्वस्थ एक दिव्य कांति का पुरुष निकला उसी का नाम था हिरण्यकश्यप। उसने ब्रह्मा जी से मैं दिन में नहीं मरूं रात में नहीं मरूं महीने में मैं नहीं मरूं मैं आकाश में नहीं मरूं पाताल में नहीं मरूं और आपके द्वारा बनाए हुए प्राणियों से मैं किसी से नहीं मरूं धरती पर नहीं मरूं आकाश में नहीं मरूं सांपों से मनुष्यों से गंधर्वों से किन्नरों से किसी से भी मैं नहीं मरूं घर के अंदर नहीं मरूं बाहर नहीं मरूं। इस प्रकार से उसने वर मांग लिया एकदम वज्र जैसा शरीर निरोग 16 वर्ष जैसा नौजुवक बना रहेगा और उसने सारी पृथ्वी को ब्रह्मांड को जीत लिया देवताओं को भी अपने वशभूत कर लिया। इस प्रकार से इतना प्रतापी हिरण्यकश्यप राजा हुआ उसको कोई मार ही नहीं सकता था यहां तक कि ब्रह्मा और सभी लोग उससे थक थर कांपने लग गए। जो कुछ आप कल्पना कर सकते हैं सूप की, उसके घर में सभी कुछ उसके समय था उसके घर में। आप मत समझ लीजिए कंप्यूटर का उस समय में आविष्कार नहीं हुआ और फैन नहीं था और कूलर नहीं था, ये सब की कल्पना उससे बहुत ऊपर थी। सारी चीजें उसको उपलब्ध थी जो जीवन में मनुष्य आप कल्पना कर सकते हैं पा नहीं सकते। वो बीता बड़ा सुख से राज्य करने लगा और उसी के घर में एक लड़का पैदा हुआ, उसका नाम हुआ प्रहलाद। बचपन से ही प्रहलाद भगवान का नाम करता था। वो कूटनीति में, राजनीति में, राजनीति माने क्या, कूटनीति, अपने माता पिता को भी धोखा देना, राजनीति। आजकल उसकी राजनीति और गंदी, पहले तो राजनीति में कुछ था, आज नीति करने जाइए आप बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए राजनीति के चक्कर में मत पड़िए। तो वो बेचारे को स्कूल भेजा अपने उसके पिताजी ने, किसके पास में भेजा, संडामर्क शुक्राचार्य के पुत्र, शुक्र के आचार्य, शुक्र से जन्म होता है, यही शुक्र माता के गर्भ में जाकर के बेटा बेटी उत्पन्न होकर के संसार होता है, इसके आचार्य थे वो। कैसे जन्म होता है, और उनके पुत्र हैं संडामर्क। संड माने सांड जैसे, अमर्क माने अंधकार, कोई भगवत भक्ति से संबंध नहीं, आत्मज्ञान नहीं, बस साम दाम दंड भेद, कैसे दूसरों को कंट्रोल कर सकते हैं, उनका धन हड़प सकते हैं, कैसे हम प्रधानमंत्री बनेंगे और कैसे हम प्रेसिडेंट बनेंगे, राजा बनेंगे, बस ऐसी ही नीति को शिक्षा देता थे वो लोग। उनके पास में पढ़ने के लिए भेजा, किंतु यह बच्चा यह सब चीजें नहीं पढ़ता। वो भगवान का नाम करता, भगवान का ध्यान करता, भगवान का चिंतन करता था बचपन से ही। क्यों करता था हम पीछे बतलाएंगे। एक दिन उसके पिताजी ने उसे बुलाया, जब इस पाठशाला से लौट कर गया तो उसकी मैया ने उसे श्रृंगार कर दिया और पिताजी उसको अपनी गोदी में ले लिया और बड़े प्यार से उसका सिर सूंघते हुए सहलाते हुए बोले कि बेटा तुम स्कूल में जो पढ़ा, जो तुमको अच्छी लगी जरा बतलाना, तुझे क्या तुमने पढ़ा। वो सोचा था ये राजनीति दंड नीति और कैसे पैसा बनाया जाता है, कैसे राजा हो जाता है आदमी, कैसे प्रेसिडेंट बनता है, कैसे लोगों को कंट्रोल कर सकता है, आजकल ये सब शिक्षाएं प्रचुर परिमाण में ये सब की जा रही, तो वैसे समझा था जी यही कहेगा। किंतु उसने कहा सत्साधु मन ने असुर वर्ग देहिनाम सदा विघ्न धीयान असत ग्रहात हितात्म पातम गृह मंदभुवा जब वनम गतो हरिमा। उसने सहज रूप में कहा हे असुर श्रेष्ठ, इस संसार में सदा लोग उद्विग्न हैं। क्यों, संसार में आसक्त होकर के सुखी होने की लालसा से धन कमाते हैं, विवाह शादी करते हैं, तरह तरह के घर बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, किंतु उसमें उद्विग्न रहते हैं कहीं नष्ट न हो जाए, कोई मर न जाए, कोई रोग न हो जाए, कैसे। इसलिए इस संसार में यह संसार एक अंधे कुएं की भांति है जिसका इन्होंने वर्णन किया। उस अंधे कुएं से निकल करके भगवत भजन करना ही सर्वोत्तम है, शिक्षा का आदर्श समझता हूं। इसके बिना कोई भी सुखी नहीं रह सकता। हिरण्य कश्यप नारी ये तो बड़ा बदमाश निकला, हमारे चंदन वंश में ये तुषार कहां से जन्म कर, ये तो वंश का फुलंगार जन्म, ये विष्णु हमारा शत्रु है, हमारे भाई को मारा है और उसी का गुणगान कर रहा है, मैंने पाला पोसा इसका जन्म दिया, भगवान कौन है। भगवान तो अपने मन से कल्पना से कर लेते हैं, भगवान कोई चीज नहीं है। भगवान को किसने देखा, अरे मैंने तुमको जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, पालन पोषण कर रहा, हमको नहीं मानता है तो उसको क्या मानेगा, और इसकी बुद्धि कैसे खराब हो गई। संडामर इसको तो अच्छी से शिक्षा देना, इसके बाद तुमको छोड़ देता हूं। मालूम होता है कोई आदमी इसमें प्रवेश कर गया और इसको ये कुछ शिक्षा दे गया। भगवान के भजन को आजकल लोग कुछ शिक्षा कहेंगे, आप भी लोग कुछ सज्जन है जो आए हैं हरि कथा के लिए सुनने के लिए, नहीं तो सब सब यही से इसमें तो कोई शिक्षा ही नहीं है। कैसे धन कमाएंगे, कैसे हम संसार का पालन करेंगे। राजनीति की कोई बात होती, हमारे इंदिरा आई थी यहाँ पर, इंदिरा गांधी हमारे यहाँ की प्रधानमंत्री, उसमें लाखों करोड़ों लोग यहाँ पर जितने यहाँ के थे सब लोग जमा हो गए। क्या देकर के गई, ये बातों को देकर के गई? कोई प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री ये सब चीजें देगा जो जीवन में सुखी होंगे? वो देखेगा जैसे इसलिए आएगा जब फिर से हमको वोट देंगे और फिर मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, इसका अतिरिक्त तो किसी काम के लिए नहीं आएगा, आपके जीवन को बर्बाद कर देगा, आपको चूस लेगा, चूसने के लिए लल्ली चप्पू बातों को करने के लिए सब आते हैं। मैं कहा कि खबरदार ऐसी बातें हम सुना इसके मुख से, इतना भोला भाला लड़का इतनी कमर उम्र में कहां से ये विष्णु का भजन करने लगा, बुरी बात कहां से सीख लिया, इसने तो ये सब जगत की बातें सीखी नहीं, ले जाओ। वो लोग ले गए, कुछ दिन तक और रहा, फिर कुछ दिनों के बाद में पढ़ने लिखने के बाद में फिर एक दिन फिर उसको लाल प्यार से गोदी में लेकर के पूछा, बेटा तुमने क्या शिक्षा लाभ की? तो आज उसने और थोड़ा सा बढ़ करके बतलाया, श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरण, भगवान का चिंतन करना, उन्हीं का नाम कीर्तन करना और उन्हीं की पूजा करना, इस प्रकार से सब प्रकार से भगवान में चित्त तन्मय होकर उनका भजन करना ही सब शिक्षाओं में उत्तम शिक्षा है, इसके अतिरिक्त नहीं। इसमें गुरु के चरणों में प्रणत होकर के जो भजन शिक्षा जानते हैं उनके चरणों में पहले आत्मसमर्पण करके भजन करना सीखो। अरे हारमोनियम बजाने के लिए, अभी ऑफिस कंट्रोल करने के लिए कहीं जा करके एक्सपर्ट के हैं सीखना पड़ता है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, तो जिस चीज को कभी देखा नहीं, अनुभव नहीं किया, उसके लिए ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं, ऐसे ही भजन हो जाएगा? इसलिए ऐसा नहीं, कोई सदगुरु के पास में जाकर उसके चरण आत्मसमर्पण करके सीखो भजन की रीति, और सुन करके फिर भगवान का श्रवण करो, कथाओं को कीर्तन करो, उन्हीं का स्मरण करो, इससे पढ़कर के जगत में शिक्षा। सुन करके तो एकदम पागल हो गया, क्रोध से एकदम लाल हो गया, बच्चे को अपने गोद से लेकर के पटक दिया, ये कुलंग गार्जियन मार। मैं सोचा था कि अपने स्वभाव को बदल करके ये अच्छी शिक्षा ग्रहण करेगा, ये कहाँ से कुलंगार इसने ऐसी शिक्षा पाई, संडा मर खुला, दोस्त तुम लोगों ने ऐसी शिक्षा क्यों दी? महाराज हमने इसको शिक्षा नहीं दी, ये तो स्वाभाविक रूप से काजनी क्यों बोलता है, हमने तो इसको बड़ी अच्छी सी शिक्षा दी जो आपने कहा था, ये कहाँ से सीखा? अच्छा मैं अभी ले जा करके अभी देखता हूँ और शिक्षा दे करके फिर आपके पास में लाऊंगा। वो लेकर के चला गया। इन लोगों ने पूछा, प्रहलाद तुमने ये कहाँ से सीखा ऐसी शिक्षा, हमने तो ऐसी शिक्षा नहीं। उसने कहा कि आप लोग ऐसी शिक्षा नहीं दे सकते, ये तो स्वाभाविक रूप में ऐसा कर रहा हूं। जो लोग इस संसार में चर्बी चर्वण करते हैं, चर्बी चर्वण माने क्या, इस संसार में यदि एक कुत्ता है उसको कहीं से एक हड्डी मिल गई, उसमें चमड़ा कुछ लगा हुआ था, वो झट दौड़ करके पहुंचा और उसको ले करके दौड़ा, और दे करके वो सोच रहा था कि कहीं निर्जन स्थान में गड्ढे में छिप करके उसको खाएंगे, उसमें रस आएगा, इसलिए करके भागा। इतने में दस कुत्तों ने देखा, दस कुत्तों ने भी उसका पीछा किया और उसे काटने लगे, जब देखा कि प्राण नहीं बचेगा तो उसको छोड़ करके और दुम दबा करके एक खड़ा हो गया देखने लगा, और फिर दूसरे जिसने उसको पकड़ा फिर दूसरे सभी लोग उसको काटने के लिए दौड़े। हड्डी चुसता है और अपने दांतों के उसमें लग जाता है और उसमें रक्त निकलता है, अपने ही रक्त को पी करके और सोचता है बड़ा मधुर क्या ही नमकीन रस आ रहा, वो रस कहीं का नहीं, वो हड्डियों को चूसने से उसमें लग करके अपना ही वो रक्त चूस करके बड़ा खुश होता है। ऐसे ही हम चबाए हुए को चबाते हैं, और हमारा एक कुत्ता बहुत कुछ खा लिया और खाने के बाद में पेट में दर्द होने लगा और एक घास को खा लिया, घास के खाने से फिर वो जो खाया था उगल दिया और फिर उगले के वो खाता है। ऐसे ही हम जानते हैं कि हमारे माता पिता इस जीवन में सुखी नहीं हुए, हम भी इसके द्वारा सुखी नहीं हो सकते हैं। अपनी मैया से पूछो जो 80 वर्ष की हो गई है, मैया तुम सुखी हो तो? बेटा मैं क्या सुखी, अब चल नहीं फिर सकती, बुढ़ापा आ गया, बहुत दुखी है, मेरी बात ही कोई नहीं सुनता है, हमारे जितने बेटे थे और बेटियां थी उनकी शादी होती सब मैंने कभी सोचा जब अपने बुढ़ापे में बड़ी सुखी रहूंगी, अब मुझको कोई पूछता ही नहीं है, घर से बाहर कर दिया हमको, और ये बुढ़िया मर क्यों नहीं जाती, खांसी जाती है दिन भर, तो बतलाओ। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं प्रहलाद महाराज जी, इससे कोई जो कि जानता नहीं है संसार को और उसी चूसते हुए उसको चूसते हैं, हड्डी को चूस रहे हैं। संसार से आना सकते हैं ऐसे सदगुरु यदि मिले तो उनके वचनों से सुन करके पालन करने से जीवन में भी सुखी रह सकते हैं, घर संसार करके भी और इसके बाद भी हम लोग सुखी रह सकते हैं, अन्यथा नहीं। प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकश्यप को ये बातें कही, वो एकदम बिगड़ गया, मारो इसको दुष्ट, हजारों सैन्य लगा दिया अपने दुष्टों को, सैनिकों को, वो उसे मारने लगे फरसे से, बाणों से, इधर से उधर से, किंतु उसको कोई चोट ही नहीं पहुंची, मानो न जाने कौन रक्षा कर रहा, आग में जलाया, यहां तक उसकी बहन आग में जलने वाली नहीं थी, वरदान था, उसको गोदी में लेकर के जलती हुई आग में बैठी, वो जल गई किंतु ये निकल आया, समुद्र में फेंका न जाने कौन उसकी रक्षा, पहाड़ों से ऊपर से फेंका नहीं मारा, सांपों से कटवाया, सांप उसे काटने नहीं आई, हाथियों से कुचलवाने की चेष्टा की, हाथियों से डर करके पहले ही भागे, किसी तरह से उसकी मुक्ति में बड़ा घबराया। संडा मर्क ने समझाया, हमारे पिताजी जरा बाहर में गए, अभी आ जाने वाले हैं, इसको समझा बुझा करके ठीक कर देंगे, आप छोटे से बच्चे से इतना डर रहे हैं, डरने की कोई बात नहीं, ये बच्चा आप विश्व संसार आपके बच्चीभूत है, देवता लोग आपके अधीन है, आप मर नहीं सकते और इसे डरते हैं, भाई साहब इससे मर जाऊं मैं, मुझे तो डर लग रहा है, इस छोटे बच्चे को कोई हम लोग मार नहीं सकते, किसी प्रकार से ले गए। ले जाने के बाद में एक दिन उसके गुरु दोनों थे किसी काम से चले गए, बोले जैसे अभी मैं अभी हम लोग आ रहे हैं, प्रहलाद को कहा कि बच्चा इन सबको मानेसर तुमको कर देता हूँ और तुम इनको थोड़ी सी इधर उधर से रखना, झगड़ा न करें। गुरु जी चले गए, प्रहलाद महाराज जी वहां पर बैठे थे, बच्चों ने कहा गुरु जी चले गए खेले हम लोग, प्रहलाद महाराज ने खेलेंगे हम बड़ी सुंदर खेल खेलेंगे, पहले हमारी बात को थोड़ी सुन लो, दो एक बातें हम तुमसे कहें, देखो बचपन से भगवान का भजन कर आप आओ महाराज, बचपन से 5 वर्ष की उम्र से जब से होश हो जाए, जब ही से होश हो जाए तभी से भगवान का भजन कर सकते। बच्चों ने कहा जब भगवान और उसका भजन क्या, अरे यदि भजन भी पूछा है तो हम बड़े होने पर विवाह शादी करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे विवाह शादी करेंगे, धन कमाएंगे, जब बूढ़े हो जाएंगे तो भजन करेंगे। प्रहलाद महाराज ने कहा अरे बेटा ये भाइयों देखो कोई जरूरी है कि तू बूढ़ा हो जाएंगे उसके पहले ही मर जाएगा, कोई तो गर्भ में ही मर जाता है, कोई गर्भ से निकल करके मर जाता है, कोई 5 वर्ष की आयु में मर जाते हैं, भाई इसका कोई ठीक नहीं है कि तुम बूढ़ा होगा ही, और यदि बूढ़ा हो जाएगा उसमें कमर भी सीधी नहीं होगी, उसमें तू क्या भजन करेगा, इसलिए बचपन से भगवान का भजन करना चाहिए। उन्होंने कहा जी तो तभी हम लोग ये सब शिक्षा लाभ करेंगे, एक्सपर्ट होंगे, हम इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, वकालत पढ़ेंगे, लॉ पढ़ेंगे, मैनेजमेंट पढ़ेंगे, इधर कंप्यूटर पढ़ेंगे, इधर उधर करेंगे, पैसा कमाएंगे। अरे भाई जरा सोचो तो, आप पहले ही मर गया तो क्या होगा, कोई गारंटी नहीं ये कब कौन मरेगा, परीक्षित महाराज जी वो 7 दिन की गारंटी थी, अभी कोई एरोप्लेन कोई जा रही थी कहीं जा रहा था और उसमें बहुत से यात्री लोग बैठे हुए थे, कहीं जा रहे थे अभी सर बैंकॉक के पास में कहीं, और उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई और गिर गया, जिसमें जितने लोग थे सब मारे गए, बड़े बड़े लोग थे, कहाँ हुआ घर में ही नहीं पहुंच सके। अभी बगदाद में अमेरिका ने बम छोड़ा, कितने आदमी मरे वो जानते थे जब भी मरेंगे, अभी कोई महायुद्ध हो जाए कोई ठीक है जब कब कौन मरेगा, अभी घर का छत गिर जाए कब कब क्या हो जाए कोई ठीक है, इसलिए बचपन से भगवान का भजन करना चाहिए। न तब प्रयासो कर्तव्य जब आयु व्यय धर्म, तो हम लोग सुखी कैसे रहेंगे, धन नहीं कमाएंगे। अरे तुम ये मत समझो जो रुपये से परिश्रम करने से ही, कर्म करने से ही धन आ जाएगा। एक आदमी एक अंधे कुल में अंधे होकर के जन्म लिया दरिद्र के घर में, क्यों? और एक यहाँ के प्रेसिडेंट के घर में एक बच्चा जन्म लिया, क्यों लिया? उसका स्वस्थ शरीर है, बुद्धि भी तेज है, थोड़ा सा कुछ पढ़ता है और फर्स्ट क्लास फर्स्ट आता है। और एक लड़का अंधा लंगड़ा बूढ़ा गरीब दरिद्र घर में जन्म लिया, दिन भर काम करता पेट नहीं भरता, ऐसा क्यों हुआ? परिश्रम किया उसने और दूसरे ने परिश्रम किया था जो ऐसा हो गया, क्यों हो गया इसके लिए सोचिए। हमारे देश में एक गरीब घर के लड़के थे लाल बहादुर शास्त्री, वो प्रधानमंत्री हो गए। कैसे हो गए? कोई धनी घर में जन्म ग्रहण किया, क्यों जन्म ग्रहण किया? एक दरिद्र घर में लंगड़ा गुना क्यों जन्म हुआ? अपने कर्मों के, पूर्व जन्म में तुमने ऐसा कर्म किया है उसके प्रभाव से तुम कुछ नहीं करने पर आज राजघराने में जन्म होगा और बड़े सुख भोगेगा, और यदि होगा तो खुदा थप्पर फाड़ करके तुम्हें दे देगा, और नहीं तो दिन रात परिश्रम करने पर तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। इसलिए चिंता मत करो, जिसको भगवान ने पेट दिया है शरीर दिया है उसके कर्म के साथ में दिया है, जिसने पूर्व जन्म में जैसा कर्म किया है वैसा फल भोग करेगा बाध्य होकर के, नहीं तो दिन भर करने से भी कुछ नहीं होता। और जो काम कुछ नहीं करता तो अभी देखते हैं कि सुखी है, क्यों? अरे पूर्व जन्म का ये फल भोग रहा है, अभी इस जन्म में तुम ऐसा अच्छा नहीं कर्म करेगा फिर न जन्म तुम क्या होगा, कोई गारंटी नहीं। इसलिए बचपन से ही भगवान का भजन करो। हम लोगों को तो कुछ करते तो नहीं है, कैसे भोजन होता है, कैसे करते हैं, कपड़े कहाँ से आते हैं, आज विश्व का भ्रमण कर रहा हूँ कहाँ से पैसे आ रहे हैं, एक पैसे का तो मैं काम तो कोई नौकरी चाकरी बाड़ी की व्यवस्था कुछ तो करता नहीं, क्यों हमको खाने के लिए इतने आदमी लड़ाई करते महाराज आज हमारे घर में प्रसाद पा लीजिए, आज हम लोग आपको खिलाएंगे, आपका किराया हम देते हैं, हमारे देश में आइए, विश्व में सब जगह से कर रहे हैं, क्यों? मैं क्या करता हूँ, केवल करता हूँ भगवान का थोड़ा सा नाम करता हूँ और भगवान का भजन करता हूँ। इसलिए आज हमारे पास में लाखों आदमी आ जाए उनके खाने के लिए कोई चिंता नहीं रहती है। अभी उत्सव हम लोग करेंगे जिसमें कि 20-25 हजार आदमी आएंगे, 10-15 दिन तक ऐसा ही सदा व्रत चलता रहेगा, दोनों बार खाएंगे, कहाँ से आता है भगवान का भजन करने से ऐसा ही। ऐसा मत समझिए ऐसा हमने ये हम परिश्रम करके कर लेंगे, हम समझते हैं कि पूंजा परिवार के पास में अभी पैसे हैं, बड़ा बड़ा कारोबार है, उनसे बहुत परिश्रम करने वाले लोग हैं, उनको भूख उनका पेट नहीं भरता, इन लोगों के घर में जिस जन्म लेते हैं वो कैसे हो जाते हैं, पूर्व जन्मों का कुछ है। इसलिए इस जन्म में कुछ भगवान का भजन करो, कुछ ऐसे कर्म करो जो भविष्य जन्म के लिए होगा। इसलिए वहां पर बच्चों से कह रहे हैं देखो इसके लिए प्रयास मत करो जब मैं अपने कर्मों से सुखी हो जाऊंगा, यह जन्म तो केवल भगवान का भजन करो और जैसा जैसा आप तुम्हारा समय आ रहा है उसी के अनुसार में अपना जीवन पालन करते हुए कर्तव्य करते हुए भगवान का भजन करो। भगवान का भजन करना बहुत परिश्रम नहीं है, बस उनको केवल प्रणाम कर दो, कह दो हे प्रभु मैं आपका, इसमें क्या लगता है, राम राम कह दो, राम राम नहीं आता है मरा मरा कह दो भाई, तब तो उल्टा नाम जपत जग जाना बाल बीक भय ब्रह्म समाना, नाम अलीक भव सिंधु सुखाही, करो विचार जन मनवाए, विचार तो करो, मनुष्य हो बुद्धि दिया है भगवान ने इसका उपयोग तो करो। इसलिए कह रहे हैं प्रहलाद महाराज जी देखो 100 वर्ष की आयु भगवान ने दी, तुमने बनाई मनुष्य शरीर, तुमने बनाया, भगवान ने कृपा करके दिया, और 100 वर्ष की आयु में देखो 50 वर्ष सोने में रात में चला गया, और अतिशेंद्रीय व्यक्ति हैं जो शराब पीने वाले हैं और वो तो जीवित होते हुए भी मरे हैं, उनका तो सभी सारा समय ही बर्बाद जाता है, तो आधा समय तो सबका ही चला जाता है सोने में, और आधी आयु में से जन्म से लेकर के 5-6 वर्ष तक तो ऐसे ही चला गया, इसके बाद स्कूल कॉलेज में गए एक्सपर्ट बन गए उनको लग गया 20 वर्ष तक, आजकल समझता है 25-30 वर्ष तक एक्सपर्ट होते हैं, और जो भी जाएंगे इधर आएंगे उधर करेंगे
खेल हो गए तो दूसरी बात हो गई, कोई कोई पांच वर्ष तक एक ही जगह में बीकम में ही खेल हो गए, वो बीकम के बाद में घर में क्या होते हैं वो हो जाता है। तो इस तरह से वो तो गया 50 वर्ष और इधर में 20 वर्ष की आयु ऐसे पढ़ने एक पार्ट भी हो के चला गया और अंतिम जो आयु है 80 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष की आयु वो बुढ़ापे की स्थिति उसमें नहीं सभी भी सुधार नहीं होता, आंखें कमजोर हो जाती है, शरीर दुर्बल हो जाता है, चलते हैं तो लकड़ी की सहायता से कोई पूछता नहीं, जिसको आपने सब धन संपत्ति देकर के बढ़ा दिया वही आपको दूध जैसे मक्खी जैसे नहीं देती है, वैसे ही आप इच्छा के युद्ध करेंगे आपकी बात को नहीं सुनेगा, उसमें जगह में बाण टूटते हैं। तो ये 20-20 फीट और गया करीब करीब कितना 50 और इधर में
90 वर्ष
चला 10 वर्ष रहा। अब 10 वर्ष में भी अब तुरंत कामना है, विवाह शादी करना है, घर बार करना है, मकान लेना है, इधर में कार यानी नहीं, यदि कार नहीं तो तुम जीवन ही पिछा गया, यदि ये सब उपकरण नहीं है आपके घर में तो जीवन ही पिछा। इस तरीके ये 10 वर्ष की अपुरंत कामनाओं में जीत जाते हैं, कैसे कामना में ये जीत जाते हैं, एक गरीब आदमी भीषा मांगने के लिए हो जाता है, भीषा मांगते मांगते एक गरीब स्थिति स्वास्थ्य सत्व मिल गया, सत्व मिल गया है तो लेकर के अपने पास रखा है और रख करके दो पहले तेज की दोपहरी में वो सो गया एक कुम्हार के घर जो बर्तन मिट्टी का बनाते हैं, तो मिट्टी का बना करके उसको पका करके वो बेचते हैं, तो वो एकदम चारों तरफ अपने घर में सजा करके रखा है।